पुस्तक देख करके कीर्तन नहीं करना है।
नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरत्ते गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणानि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुत तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं माम चरणं। भगवतामृतम द्वितीय अध्याय सप्तम द्वितीय विभाग सप्तम अध्याय रामेण सर्धम मथुरा प्रणीते सा फल्किना मयि अनुरक्त चित्ता बिगाड़ भामेण न मे वियोग तीव्राधयो अन्नम ददृशु सुधाय सुखाय। अभी हम लोग जिस चीज का वर्णन कर रहे हैं यह श्री भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने शिला किनको महाराज परीक्षित जी को यह सब सुनाई थी। परीक्षित जी अपनी मैया को बतला रहे हैं। भक्ति की ये अंतिम सीमा की बातें बतला रहे हैं। हम लोग प्रसंग वस्तः इसको भी पाठ कर रहे हैं किंतु बहुत से ऐसे लोग हैं, अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, सुन तो रहे हैं किंतु समझना बहुत बड़ी भारी बात है और करना तो और भी बात बहुत ऊपर की चीज है। तभी प्रसंग आया था इसलिए हम लोग इसको पाठ कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को इन चीजों को समझने के लिए कुछ कुछ चीजें समझनी होगी। ये जो भाव हैं इनका नाम है रागात्मिक भाव। रागात्मिक भाव, रागात्मिक भाव कहते हैं किसको? कृष्ण के ब्रज के नित्य जो परिकर हैं उनके हृदय में कृष्ण के प्रति सेवा की कैसी उचित स्थिति है, जैसे कृष्ण भी उनके वशीभूत हो जाते हैं, उनको कहते हैं रागात्मिक जन। ब्रज में किस प्रकार से वो सेवा करते हैं, अपनी मैया को ये बात बतला रहे हैं। क्योंकि मैया ने कहा था श्रीमद् भागवत का सार हमारे समझ में नहीं आया, सर्व शब्दों में स्त्री जाति के सुलभ तुम बतलाओ। किंतु रागात्मिक जन किसको कहते हैं ये क्या आदमी समझेंगे? ये बहुत भजन साधन की अंतिम सीमा है ब्रजवासियों के भावों को। इस जगत में जिनको इनके भावों को सुन करके वैसे ही सेवा करने का लोभ होता है सचमुच में यथार्थत, वे साधक होते हैं रागानुग। रागानुग या रागानुगा साधक होते हैं जिनके हृदय, माने ये अभी साधक नहीं है, ये रागानुगा का भी साधन का अधिकार है जिनको लोभ हुआ। जिनको लोभ हो गया है उसको पाने के लिए यथार्थ रूप में उसके कुछ लक्षण हैं। क्या लक्षण है? उनको रुचि से भक्ति आरंभ होती है, रुचि और आसक्ति से। उनमें जहां लोभ हुआ उनके अंदर में अब अनर्थ इत्यादि जो हैं, कौन सा अनर्थ? सबसे पहला नमापराध, सेवापराध। नमापराध एकदम बिल्कुल नहीं होगा, ये संपूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। सेवापराध भी उनके दूर हो जाएंगे। और उनका व्यवहार कैसा होगा? उपदेशामृत में जैसा लिखा है वो मन इत्यादि वेगों को उनको दमन कर लिया है। अत्याहार प्रयास के द्वारा इन भक्ति विरोधी चीजों का को दूर कर दिया है। छोर सत्संग उनके लिए होते हैं। कौन सा सत्संग? ये छोर संग हुआ। इसके बाद में वैष्णव के प्रति उनका क्या कर्तव्य है? कौन से वैष्णव के प्रति कौन सा उनका कर्तव्य है? कृष्ण तिजस्य मनसाद्रियत दीक्षस्त चेत, ये सब भाव हो गए हैं। इसके बाद में जो नाम में रुचि नहीं हो रही है वो रुचि भी हो गई। और इसके बाद में वो जो भजन में जो अनर्थ हैं, कौन से अनर्थ? इसके ऊपर वाले स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध इत्यादि, ये 16 प्रकार के, चार चार प्रकार के एक, ये सब दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा उनका गंध रह सकता है। अंत में ये भी दूर होगा, लय विच्छेद, क्या ये चार भी दूर हो जाएंगे। लय माने हरि कथा में सो जाना, भगवत ये स्मरण करने में मंत्रों को, दीक्षा मंत्र जब हम करते हैं उसमें में बहुत से लोगों को नींद आ जाती है, दूसरी दूसरी गजगज बातें आने लगती हैं। लय माने कीर्तन करते समय तो जरा जगे रहेंगे यदि उठ करके कीर्तन करेंगे, और बैठ करके कीर्तन करेंगे तो कभी कभी उसमें भी हो जाएगा। किंतु हरि कथा सुनने में और दीक्षा मंत्र इत्यादि जपने में मन ही मन में हरे कृष्ण जपने से नींद आ जाएगी। ये भी दूर हो गया। विक्षे हरिनाम करते समय में और हरि कथा श्रवण के समय में विक्षेप होगा। विक्षेप माने क्या? इधर से चित्त जाएगा, ठीक से चित्त नहीं रहेगा। अब यहां पर बैठे हैं और कहां कहां की चिंता हो रही है, विक्षेप और अप्रपत्ति। इच्छा करने पर भी मन ही नहीं लगेगा, तो उठ करके हरिनाम करेंगे, चलते फिरते करेंगे, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, दो गाल बातें करेंगे किसी से, मन ही नहीं लगेगा। फिर हरिनाम को छोड़ करके दूसरे काम में लग जाए। चेष्टा करने पर भी नहीं होगा। और कसा है? पूर्व जन्म के संस्कार के जो चीजें हैं वो हरिनाम करते समय में, हरि कथा सुनने के समय वो ही आ जाती हैं मन में। और रसास्वाद, रसास्वाद माने क्या? हरिनाम कर रहे हैं, अब मन ही मन में आज हमारी कोई संतान लड़का हमारी गोदी में बैठ गया, उसे प्यार कर रहे हैं। या हरिनाम करते समय बहुत से लोग या पहले खूब प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है, और उसी समय में उसी की चिंता कर रहे हैं, रसास्वाद कर रहे हैं। टीके जाने के बाद भी और चार रह जाते हैं अनर्थ। वो क्या अनर्थ? पूर्व जन्म की अच्छे कर्मों के भक्ति उत्तर, सुकृति उत्तर, दुष्कृति उत्तर और अपराध, ये बहुत से अनर्थ हैं। सुकृति उत्तर माने क्या?
पूर्व जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म किए उसका फल मिल जाता है, रुपये पैसे अनर्गल आने लगते हैं भजन करते समय, और बड़ी प्रशंसा देने लगते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, बस उसी के भोगने में लग जाएंगे, उसको खर्चा करने में लग जाएं, जैसे हम लोग अभी कर रहे, बस भजन का समय चला जाएगा। मान लें कि 1,00,000 रुपया देगा कोई, तो खर्च तो करने पड़ेंगे। आप कर रहे थे हरिनाम निर्विकार से, अब आया जाइए ये पैसा क्या करूं, हरे कृष्ण पैसा क्या करूं, एक मंदिर बनाऊं, एक गैया खरीद लूं, उसे ठाकुर जी की सेवा होगी, किसी को देखा दुखी तो क्या किया उसको दूं, इस तरह से उसके प्रविधान करने में ही समय चला जाता है। प्रतिष्ठा आने से भी यही दुष्कृति पूर्व जन्म में की है, हरिनाम करने बैठे और फिर उसने पूर्व जन्म में के कर्मों के अनुसार में आपको कोई ऐसा रोग हो गया, जब ही हरिनाम की माला पकड़ते हैं सिर में बड़ा भारी दर्द हो जाता है। यदि सवेरे यदि 6 बजे से आगे उठ गए 5 बजे 5:30 बजे तो आज दिन भर अब की वजह ठीक नहीं रही। कोई पेट का रोग हो गया, हरिनाम करते हैं पेट में दर्द होता है, ऐसे कितने दर्द, दांत में दर्द हो गया, इतनी टीश मारे कि हरिनाम उस समय होगा। आंख में कोई दर्द हो गया खूब जोर से, आंख सूज गई तो समय हरिनाम की माला चलेगी, ना कि दिन रात मन वहीं पर जाएगा। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर जी ने कहा है क्या, देह रोग दूर रहे, क्या एक है देह रोग भी दूर रहेगा, हाँ संसार पुकार खाने ना पसीबे। अच्छा संसार पुकार माने क्या, महाराज जी एक आकर के स्त्री रोने लगी, महाराज जी मैंने शादी अपने लड़की की थी, आज उसके वहां पर ससुर वालों से मार पीट करके और उसे आग से जलाने की चेष्टा की और बार बार मांग रहे हैं क्या क्या स्कूटर मांग रहे हैं क्या क्या मार रहे हैं, मार पीट करके उसको जलाने की तैयारी की, फिर दूसरे दिन आके जला करके महाराज मर गई और बड़ी विलाप करने लगी। यह संसार का फुकार है वो, आप अभी जब तक अभी अनर्थ दूर नहीं तब तक ही आप सुनने के लिए बाध्य होंगे, आपका मन वैसा ही हो जाए उसमें लग जाए, भजन हो गया दूर। कोई आकर के कुछ ऐसा कहेगा, अधिकांश लोग जो हैं अनर्थग्रस्त जो भजन करते हैं वो अपने गुरु को आकर के ऐसे ही बातें करेंगे, किस गुरु के पास में, जो शिष्य अनुबंधनियात अधिक शिष्य को करके अनाधिकारी को करता है वैसे ही। यदि गुरु कहे जैसे जिसको एकमात्र भगवत भजन की लालसा है वही हमारे पास है, हम किसी को नहीं चाहते, तभी ठग बक करके वो आ जाएंगे ऐसे लोग, अनाधिकारी जुट ही जाते हैं और गुरु के चित्त को भी नष्ट कर देते हैं, तो ये सब अनर्थ हैं। और भक्ति का अपराध क्या, जो धन संपत्ति प्रतिष्ठा आती है ये औपाधिक भक्ति का फल है, शुद्ध भक्ति का नहीं। औपाधिक भक्त माने दूसरी कामनाओं को कर करके और संग सिद्धा आरोप सिद्धा जो भक्ति करते हैं उसका ये फल है। शुद्ध भक्ति का फल है कृष्ण में प्रेम लगना, बस और कुछ नहीं, प्रीति लगना। ये सब जब दूर हो जाते हैं भाई तब ये रुचि से ही निष्ठा को भी छोड़ दिया, आदौ साधु संग तो अनर्थ साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद में निष्ठा, इसके बाद में रुचि और आसक्ति उसको हो जाती है जिसको इन रागानुगा में लोभ हो गया। इसलिए अभी संसार की वासना गजगज कर रही है, थोड़ी सी कोई अपमान कर दिया तो मारने के लिए बैठे, तामसिक और राजसिक भाव परिपूर्ण रूप से हैं, ये सब अभी हैं। बल्कि उसका लक्षण ये समझो का क्या, शांति अव्यर्थ कालोत्तम विरक्तिर मान्यता, उसका आभास इसमें आने लग जाए तब समझो कि सचमुच में उसको लोभ हुआ है, ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा। और तब इसका साधन करेगा, साधन करने के समय में इसको श्रवण करे ऐसा व्यक्ति, तब कुछ कुछ समझेगा। अन्यथा अभी हरि नाम करो, वैष्णव की सेवा करो, हरि कथा श्रवण करो, बगीचा लगाओ, फूल ठाकुर जी को अर्पण करो, ठाकुर जी के कपड़े सिलाई करो, चास करो, इस तरह से जो गुरु कहते हैं उस तरह से चलो। अभी अनर्थ को छोड़ो, हिंसा त्याग करो, द्वेष भाव दूर करो, लड़ाई झगड़ा भी दूर करो, तब फिर जब इतना उन्नत हो गए तब उनके लिए है। तो इसलिए ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए, हम इसके योग्य हुए हैं कि नहीं। अभी संसारिक वासनाएं हैं और वो त्याग करके क्षणिक आवेग में यदि वो त्याग करके आ करके इस सब का अनुशीलन करे तो क्या होगा, फिर संसार में एकदम नीचे चला जाएगा, घर में नहीं जाएगा स्त्री के पास, किंतु ऐसे ही दुष्कर्म में वो लग जाएगा, क्योंकि उसकी स्प्रियाएं संसार से नहीं निकली हैं। इसलिए ये सब विचार करके और तब ये सब सुन करके कर किया जाए। इसलिए इनको समझने के लिए ही उन्मुखता आनी चाहिए, कृष्ण भजन की उन्मुखता। उन्मुख नहीं रहने से भाई साधारण रूप में वैधि भक्ति का साधन भी नहीं होगा। इसलिए वैधि भक्ति के साधन को अच्छी तरह से करो, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर जी ने लिखा विधि मार्ग रथ जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग राग मार्गे करें, इसीलिए कहा। इसलिए साधारण चीज नहीं है, इसलिए ऐसे व्यक्ति ही त्यागी हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हम लोगों के कल्याण के लिए अनाधिकारियों को भी अधिकारी बनाने के लिए आश्रमों की प्रतिष्ठा की। उन आश्रमों में भी अब धीरे धीरे कुछ दोष आ रहे हैं, उन दोषों से सजग रहकर सावधान रहकर के हम लोगों को भजन पथ पर चलना चाहिए। अब श्री कृष्ण ऐसे रागात्मीय जन गोपियों के प्रेम की महिमा को कुछ बतला रहे हैं, ये कितना ये उच्च गोपियों के भाव हैं। रामेण सार्धम मथुरा प्रणीते सफल किना मई अनुरक्त चित्ता बिगाड़ भावेन न मे वियोग तीव्राधयो अन्नम ददृशु सुखाय। कितना बजा, साढ़े छ पौने सात। कब की बात है ये, बात है द्वारका की। कृष्ण अपने नित्य लीला में प्रवेश करेंगे और उस समय में वे शांत मुद्रा में बैठे हैं और उसी समय में उद्धव आए। उनको कुछ इंगित से ये मालूम हुआ कि कृष्ण अब अपने नित्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं। कृष्ण ने उनको अपने लीला के बाद भी, अप्रकट लीला में प्रवेश के बाद भी इनको उपदेश दिया कि तुम अभी इस जगत में रहो, उद्धव जी को, और श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 6 अध्याय से लेकर के 29 अध्याय तक उनके उपदेशों का वर्णन है, जिसको कौन ऋषि, मैत्रेय ऋषि ने भी श्रवण किया था। कैसे साधक को होना चाहिए, कैसे उनके कर्तव्य हैं, उनमें दत्तात्रेय और उनके गुरु का उपदेश, 24 गुरुओं का उपदेश, कैसे भजन करना चाहिए, ये सबका उदाहरण दे दे कर करके त्रिदंडी उपाख्यान इत्यादि उन्होंने सुना। बेस्या का वो स्थान, पिंगला का, सर्पों का, पृथ्वी का, वो सबका उदाहरण दिया और उनको भजन करने के तरीके बतलाए। उसी में ये कह रहे हैं अक्रूर प्रसंग वर्तव जब ब्रज का भाव आया, ये ऐसा कितना ऊंचा भाव है उसमें बतला रहे। रामेण सार्धम मथुरा प्रणीते स्वफाल्किना मई अनुरक्त चित्ता। जिस समय मैं स्वफाल्किना माने अक्रूर के द्वारा मैं और रामेण सार्धम बलदेव जी के साथ में मैं सफलती के द्वारा मथुरा लाया गया ब्रज से गोकुल से। उस समय में बिगाड़ भावेन विशेष रूप से बिगाड़ अत्यंत गाढ़ भाव से, बिगाड़ भाव का भाव अनुभाव इसके बाद में बिगाड़ महाभाव रूढ़ इत्यादि ये जो भाव हैं उसमें भी मोदन मोहन है, ये सब बिगाड़ भाव है गोपियों के। क्या भाई बंद हो गया? बिगाड़ भाव है ना में हमारे प्रति तीव्र आधयो ददृशु सुखाया। उस समय में हमारे वियोग में ये गोपियां तीव्र दुख का अनुभव किया। कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं जी हमारे वियोग में ये अनुरक्त चित्त हमारे प्रेम के विषय में हमारे में अनुरक्त गोपियां वियोग में तीव्र मनोव्यथा संपन्न बोलिया। हमारे मिलन के अतिरिक्त और कुछ सुख की वो कल्पना नहीं कर सकी, बस मिलन में ही सुख होगा, संदेश इत्यादि से नहीं होगा। ये उद्धव को बतला रहे हैं उनकी दशा का उस समय में। इसका सनातन गोस्वामी जी अब अर्थ बतला रहे हैं। साधक कुछ कुछ अपने हृदय में ऐसा ही वियोग समझेगा, कोटि कोटि जन्मों से वर्षों से हम कृष्ण से भी छुड़े हुए हैं किंतु इस दुख की अनुभूति हमें नहीं हो रही है। हमें किस चीज की अनुभूति है? कृष्ण के से बिछड़े होने के कारण माया जो दुख में पीस रही है उसकी अनुभूति तो हो रही है। कृष्ण वियोग के कारण ऐसा हो रहा है ये प्रतीति नहीं होती। हम जन्म रहे हैं मर रहे हैं दुखों का भोग कर रहे हैं, परिवार में सुखी नहीं है, तरह तरह की गड़बड़ी है, रुपये पैसे के लिए किसी ने हमें काट दिया, ये सब की अनुभूति होती है। हम दूसरों के दुखों को समझ नहीं कर करके उनके प्रति कितने हिंसक हो जाते हैं, उनका मांस खाने के लिए क्या क्या हम करते हैं, यह सब सुनने से ना ये कसाई जैसा करते हैं चित्त अस्थिर हो जाता है। यदि यह सबको सुना जाए, यदि बुद्धिमान होगा तो कभी भी मांस मछली नहीं खाएगा, पशुओं को बांधकर उनको जकड़कर उनके मुख बांधकर गर्म पानी की धारा दी जा रही है, उन्हें कुएं में ढकेल करके निर्बल कर दिया जाता है। इसके बाद में सब उसके चमड़े जीवित रहने पर ही उसको खींच लिए जाते हैं गर्म से लाल कर, ये मांस लाल हो और स्वादिष्ट हो, बच्चों को भी उनके ये करते हैं, उसका फल कहां जाएगा? उनको भोग करना पड़ता है कि नहीं? कहते हैं कि अरे हमने पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया किंतु फले न परिचीयते, फल से मालूम पड़ता है जो उनके पूर्व जन्म के कैसे कर्म थे, और जो अच्छे हैं उनके फल कर्म ऐसे किए थे जो भक्ति में उनकी चित्त आ रहा है। कहते हैं कि अरे जन्म से ही अंधा हो गया, भगवान ने इस पर न जाने क्या की, काल ही कर्म ही दोष लगाए, काल और कर्म का ईश्वर का दोष लगाते हैं, अपने कर्मों को नहीं सोचते, इसलिए इस दुख को तो फिर दूसरे जन्म में जब होता है पंक्ति में खड़ा करके हिटलर क्या करता है एकदम शुद्ध, वो भी नहीं इंजेक्शन लगा करके और उनको परीक्षा करते हैं जीवित रहने में उनका ये काट करके निकाल करके दूसरों को प्रत्यारोपण करने का ये सर्जरी सिखाते हैं उन्हें, पशुओं की भांति जैसे पशुओं पर होता है। उस समय ये याद होता है, इनका यही फल होता है। इसलिए किसी के प्रति सताओ मत, हिंसा मत रखो, ये सब चीजें, ये सब तो मालूम होगा। किंतु भगवत विरह में ये हो रहा है, भगवत ने भगवान को भूलने से ऐसे ये दुख हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। ये कौन समझाएगा? ये भक्त लोग समझा सकते हैं। पहले इसी की जरूरत होती है भजन राज्य में, तब पहले ये समझ करके तब भजन में प्रवृत्ति हो, नहीं तो खाओ पियो मत करो, दिन रात अर्थ कमाओ और फिर उसी में डूब करके मरो। ऐसी बुद्धि भी नहीं, सुनने में बुद्धि नहीं आएगी तो ये सब तो क्या सुनेंगे। इसलिए बतला रहे हैं अब निखिल जितने भी महाभागवत हैं, सनक सनातन वर्णित चरित्र, राधा जी के चरित्र को सनक सनातन जैसे ब्रह्मा के आदि संतान और बाल ब्रह्मचारी, ये लोग इनका चरित्र वर्णन करते हैं। और साधुत्व चरम सीमा, प्रेम की चरम सीमा जिनमें है, ऐसे गोपियों का महात्मा यहां पर कृष्ण बतला रहे हैं। संसार में जितने भी साधु की सीमा हो सकती है बड़ी, ऐसे ऐसे महान पुरुषों के द्वारा, रूप सनातन से बढ़कर के कोई नहीं होगा। स्वर्ग दामोदर राय रामानंद ये सनक सनंदन से भी लाखों गुण उन्नत हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे बाल ब्रह्मचारी, सब समय शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रहने वाले, ऐसे में महात्मा लोग इनका वर्णन करके कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम इत्यादि। ऐसी गोपियों का महात्मा स्वयं कृष्ण यहां पर वर्णन कर रहे हैं। अक्रूर सफल की मैंने उनका नाम है दूसरा, अक्रूर सफल की ना, सफल का नाम है उनके पिता का, और सफल की उनका नाम अक्रूर का। मेरी आने की इच्छा नहीं थी, ब्रज से आने की इच्छा नहीं थी, इसलिए बतलाया सफल की ना, जोर करके हमें उत्तेजित कर, हमारी इच्छा के विपरीत हमें उन गोपियों से अलग करके ये मथुरा में हमें लाया। कौन? अक्रूर। इसलिए इसका नाम क्रूर होना चाहिए, किंतु लिखा गया अक्रूर। अक्रूर माने जो क्रूर नहीं है, किंतु यहां पर क्रूरता का काम किया, हमें ब्रज से ले आए। किनसे दूर किया? हमारे प्रति अत्यंत दृढ़ता दृढ़ से रूप से अनुरक्त जो हैं, ऐसे गोपियों को। उस समय गोपियां तीव्र विरह का अनुभव कर रही हैं, छटपटा रही हैं, मूर्छित हो रही हैं। यहां पर अक्रूर के द्वारा कहने का तात्पर्य हुआ, भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं थी ये मथुरा जाएं या द्वारका जाएं, किंतु अक्रूर कहने का तात्पर्य उन्होंने आकर के कहा तुम्हारी मैया और पिता को कंस माने पीस रहा है चक्की पर और उन्हें कष्ट दे रहा है। कृष्ण का ये मेरी मैया? अरे हाँ मैया ही, तुम जसोदार नंद के पुत्र नहीं हो? तुम्हारा तो जन्म वहां हुआ और बस दे यहां पर दे आए छिपा करके तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम इनका पुत्र नहीं हो। आश्चर्यचकित होकर के कृष्ण सुन रहे हैं और दूसरी तरफ से समझो जो वो सर्वांतर्यामी ऐश्वर्य में तो उसमें भी रहते हैं, उन्होंने ही इसको सुन भी लिया। जब उत्तेजित किया तो ये उत्तेजित नहीं हुए बल्कि राम उत्तेजित हुए। राम ने कहा ये देखते हो यदि हम लोग नहीं चलेंगे तो क्या होगा, ये तो कल तक मार डालेगा, तो यदि हमें उनको रक्षा करने की सामर्थ्य है तो उनको जरूर मारना चाहिए, चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। यदि हमें सामर्थ्य नहीं होती तो वो बात नहीं थी, हम लोग नहीं जाते, किंतु सामर्थ्य जब है तो जरूर इसका प्रतिकार करना चाहिए। कृष्ण सोच रहे हैं और बलदेव जी भी कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं। इसलिए उसने अपराध किया और जबरदस्ती हम लोगों को ले आया, घोड़ों को हांक दिया, गोपियां ताकती रह गई। उस अपराध को वो जादव पुत्र है ना, यदुवंशी के लिए कहा। दूसरी बात, सचमुच में हम लोग यदि नहीं जाते तो सारे जादवों को नष्ट कर देता, देवकी और वसुदेव को भी मार डालता। ऐसा भी हम लोगों ने कुछ विचार किया, इसे भले ही हमारे माता पिता न हो किंतु हमारे माता पिता के मित्र हैं, संबंधी हैं, दोनों भाई हैं, इसलिए मित्र हैं, इसलिए इनका उपकार करना चाहिए। इसलिए हमने इनका अपराध सहज कर लिया और